झांसी राज्य का पतन और अंग्रेजी शासन का आरंभ। जिस समय बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मालकन साहब की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंची, उस समय गवर्नर जनरल साहब अवध प्रांत में दौरे पर गए थे। जब 4-5 महीने बीत गए और सरकार की ओर से कुछ जवाब नहीं आया, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने एक खलीता मेजर एलिस साहब के द्वारा भारत सरकार को भेजा। उसका सारांश ये था कि इस प्रांत में ब्रिटिश सरकार का राज्य स्थापित होने से पहले हमारे ससुर शिवराव भाव ने सरकार की जो सहायता की थी, वो झांसी के दरबार से प्रकट होती है। इस सहायता के बदले ब्रिटिश सरकार ने हमारे घराने पर जो कृपा दृष्टि की थी, उससे हमारा हमेशा कल्याण हुआ। सन 1842 ईस्वी में हमारे पति महाराज गंगाधर राव के साथ कर्नल स्लीमन ने जो संधि की थी, उससे सन 1817 ईस्वी में रामचंद्र राव की साथ की हुई संधि की शर्तें रद्द नहीं की गईं, किंतु ये वचन दिया गया था कि वे सब उसकी प्रतिष्ठा और इच्छा से विरुद्ध है। सरकार से हमारी अंतिम प्रार्थना ये है कि जिस प्रकार दतिया के राजा परीक्षित जालौन के बालाराव और ओरछा के तेज सिंह के लिए दत्तकों को सरकार ने मंजूर किया है, उसी प्रकार इस दत्तक के लिए भी सरकार अपनी मंजूरी दे। खलीता गवर्नर जनरल साहब की सेवा में भेजा गया। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब ने तारीख 24 दिसंबर सन 1853 ईस्वी को एक पत्र में ये लिखवाया कि जिस तरह ओरछा के राज्य के साथ हमने संधि की है, उसी तरह झांसी के राज्य के साथ भी की है। दोनों संधियों का आशय एक समान है। ऐसी स्थिति में एक राज्य को दत्तक की मंजूरी देना और दूसरे को ना देना उचित नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने तारीख 27 मार्च सन 1836 ईस्वी के पत्र में ये स्वीकार किया है कि देसी राजाओं को दत्तक लेने का पूरा अधिकार है, परंतु ये पत्र बुंदेलखंड के एजेंट के दफ्तर में बहुत दिनों तक पड़ा रहा। झांसी की गद्दी खाली देखकर गंगाधर राव के पुराने निवास स्थान खानदेश के भाई बंधुओं में से सदाशिव राव नारायण नाम के एक आदमी ने झांसी का राज्य पाने के लिए मेजर मालकम साहब को प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, मृत राजा के सबसे ज्यादा नजदीक का रिश्तेदार ही उसका वारिस और गद्दी पाने का हकदार हो सकता है। फरवरी सन 1854 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी कलकत्ता लौट आए, तब झांसी राज्य का विचार आरंभ हुआ। भारत सरकार के पर राज्य संबंधी सचिव मिस्टर जेपी ग्रांट साहब ने झांसी राज्य की एक बहुत बड़ी मिसल तैयार की। उसमें झांसी राज्य की प्राचीनता और उसके साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध का संक्षिप्त इतिहास देकर इस बात पर जोर दिया गया कि झांसी का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। कलकत्ता की काउंसिल में बैठकर डलहौजी साहब ने झांसी को ब्रिटिश सरकार के राज्य में मिला लेने की आज्ञा दे दी। और इधर झांसी के महल में रहने वाली लक्ष्मीबाई पति वियोग से दुखी होकर अपने दत्तक पुत्र के भविष्य की रात दिन चिंता कर रही थी। 3 दिसंबर 1853 ईस्वी को उन्होंने जो खलीता सरकार को भेजा था, उसका जवाब 2 महीने बीत जाने पर भी जब नहीं आया, तब उन्होंने 16 फरवरी सन 1854 ईस्वी, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने की सरकार की आज्ञा पाते ही बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मालकम साहब ने एक इश्तेहार मेजर एलिस साहब के पास भेज दिया, जिसमें लिखा था, 21 नवंबर सन 1853 ईस्वी को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दामोदर राव को गोद लिया था, परंतु श्रीमान गवर्नर जनरल साहब ने इस दत्तक पुत्र को नामंजूर कर दिया। इसलिए भारत सरकार की 7 मार्च सन 1854 ईस्वी की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। उस इश्तिहार में सब लोगों को बताया गया कि सारा झांसी प्रांत बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब के अधीन किया गया है। अब झांसी प्रांत की सारी प्रजा खुद को ब्रिटिश सरकार के अधीन समझकर मेजर एलिस को कर दिया करे और सुख तथा संतोष से रहे। जिस समय झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का समाचार मेजर एलिस साहब ने महारानी लक्ष्मीबाई को सुनाया, उस समय वे दुख के कारण बेहोश हो गई। होश आने पर एलिस साहब ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि पॉलिटिकल एजेंट की आज्ञा अनुसार आपका उचित सम्मान किया जाएगा और आपके निर्वाह की उदारता से व्यवस्था की जाएगी। ये कहकर जब एलिस साहब जाने लगे, तब लक्ष्मीबाई ने शोकाकुल होकर बहुत नम्रता के साथ कहा, मैं झांसी नहीं दूंगी। उनका ये अभिमान बेकार गया। झांसी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और बालक आनंद राव का हक नामंजूर कर दिया गया। मालकम साहब ने गवर्नर जनरल की मंजूरी से यह निश्चित किया कि महारानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई ने इसे स्वीकार नहीं किया। झांसी राज्य की स्वाधीनता खत्म हो जाने के बाद मेजर मालकम साहब ने महारानी लक्ष्मीबाई के संबंध में नीचे लिखी हुई सूचनाएं भारत सरकार के पास स्वीकार करने के लिए भेजी। पहली, महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी के खजाने से या जहां से वे पसंद करें 5,000 रुपए हर महीने जब तक वे जिंदा रहें दिए जाएं। दूसरी, झांसी का राजमहल महारानी लक्ष्मीबाई को रहने को दिया जाए और उस पर उन्हें का स्वामित्व समझा जाए। तीसरी, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन समय में उन पर या उनके नौकरों पर ब्रिटिश सरकार की अदालत का कोई अधिकार ना रहे। चौथी, स्वर्गवासी महाराज गंगाधर राव की इच्छा के अनुसार उनका निजी धन रियासत के लेन देन का हिसाब करके जो बाकी रहे वो और राज्य के सारे जवाहरात महारानी लक्ष्मीबाई को दिए जाएं। पांचवी, उनके रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाई जाए और उनके निर्वाह की कुछ व्यवस्था की जाए। लॉर्ड डलहौजी ने उक्त सारी सूचनाएं स्वीकार की, परंतु मृत राजा की निजी संपत्ति और रियासत के जवाहरात के संबंध में उन्होंने 25 मार्च सन 1854 ईस्वी के अपने पत्र में ये लिखा कि हालांकि गंगाधर राव का दत्तक पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, फिर भी उनकी निजी संपत्ति और रियासत के जवाहरात आदि पर उसी का स्वामित्व है, इसलिए ये संपत्ति महारानी लक्ष्मीबाई को नहीं दी जा सकती। इस आज्ञा के अनुसार झांसी के पॉलिटिकल एजेंट ने झांसी के खजाने से 6,00,000 रुपए निकालकर दामोदर राव के नाम से अंग्रेजी खजाने में जमा कर दिए और ये तय किया कि जब दामोदर राव बालिग हो जाए तब उनको ये पैसा ब्याज सहित वापस दिया जाए। इसके अलावा रियासत के सारे जवाहरात और सोने चांदी के आभूषण आदि दामोदर राव के लिए लक्ष्मीबाई के अधीन कर दिए गए। जब राज्य ही चला गया तब राज वैभव किस तरह रह सकता है? राजा रामचंद्र राव की मृत्यु के समय झांसी के सारे राजा किले में रहते थे। अब पॉलिटिकल एजेंट की आज्ञा से महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करके शहर में जाकर महल में रहना पड़ा। जैसे ही झांसी का राज्य अंग्रेजों के हाथ आया, वैसे ही उन्होंने झांसी राज्य की सेना को 6 महीने का वेतन देकर हमेशा के लिए विदा कर दिया और उसके स्थान पर अंग्रेजी सेना की भर्ती की। बंगाल इन्फेंट्री की 12वीं पलटन किले की रक्षा के लिए नियुक्त की गई और ये तय किया गया कि जब जरूरत हो तब सीपी की छावनी से कप्तान हैन या ब्रिगेडियर हिल साहब से सहायता ली जाए। झांसी के किले में जो युद्ध सामग्री कई पीढ़ियों से इकट्ठी की गई थी वो भी नष्ट कर दी गई और पेशवा के समय की बड़ी बड़ी तोपें बेकार कर दी गई। जिस समय झांसी राज्य के स्वामी भक्त सेवक अंग्रेज सरकार से वेतन पाकर अपने घरों में जाने लगे उस समय उनके चेहरों पर शोक और उदासीनता की छाया दिखाई पड़ रही थी। प्रसिद्ध इतिहासकार के साहब ने लिखा है, झांसी का प्रत्येक मनुष्य जिनका बहुत आदर करता है और जिनका स्वभाव बहुत सुशील था वो लक्ष्मी बाई व्यर्थ में ही इस बात पर जोर देती रही कि मेरे पति के घराने ने ब्रिटिश सरकार के साथ हमेशा भक्तिपूर्ण व्यवहार किया है। झांसी के राजघराने ने सरकार की बहुत सहायता की है और सरकार ने भी उस सहायता को धन्यवाद पूर्वक स्वीकार किया है। वो व्यर्थ में ही संधियों की उन शर्तों पर सरकार का ध्यान दिलाती रही जो उनके देश के नियम और रीति रिवाज के अनुसार उत्तराधिकारी नियुक्त करने के प्रतिकूल नहीं थी और वे व्यर्थ में ही उदाहरण देकर ये प्रार्थना करती रही कि जिस तरह अन्य रियासतों पर कृपा की गई है उसी तरह झांसी पर भी कृपा की जाए। परंतु सरकारी आज्ञा वज्र के समान अखंडनीय थी। सरकार ने ये निश्चय कर लिया था कि झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने से दोनों का भला होगा। लॉर्ड डलहौजी ने लिखा, क्योंकि झांसी सरकारी जिलों के बीच में है इसलिए उसको अपने कब्जे में ले लेने से हमको बुंदेलखंड में अपने सारे प्रांतों की अंदरूनी राज्य व्यवस्था सुधारने में सुविधा होगी। जब से झांसी का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया तब से महारानी लक्ष्मीबाई अपने दुखमय जीवन के दिन बहुत कष्ट से बिताने लगी। स्वराज्य प्राप्ति की कुछ आशा न रहने के कारण उन्होंने भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना में अपनी आयु के शेष दिन बिताने का निश्चय किया। वो रोज सुबह 4 बजे स्नान करके 8 बजे तक पूजा करती, फिर अपने महल के आंगन में घोड़े पर सवार होकर कुछ व्यायाम करती, 11 बजे फिर स्नान करती और दान धर्म करके भोजन करती। भोजन करके कुछ समय तक वे आराम करती। इसके बाद 3 बजे तब वे 1100 राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाती और मछलियों को खिलाती थी। देर रात तक वे कथा पुराण आदि सुनती थी। उनका यही समय लोगों से मिलने मुलाकात करने के लिए नियत था। पुराण की समाप्ति होने पर वो तीसरी बार स्नान करती थी, तब वह शयन गृह में जाती थी और यही उनकी दिनचर्या थी। उस समय उनके घर का काम उनके पिता मोरोपंत तांबे देखते थे। इस प्रकार राजकीय वैभवों और सब राजभोगों को त्याग कर वैराग्य से रहकर केवल ईश्वर की आराधना और सनातन धर्म अनुसार पूजा पाठ करने में लक्ष्मीबाई अपना समय व्यतीत करती थी। ऐसी अवस्था में एक और हृदय विदारक बात हुई। जब महारानी के दत्तक पुत्र की उम्र 7 वर्ष की हुई तब उसके यज्ञोपवित संस्कार के लिए उनके कारिंदों ने ये सलाह दी कि स्वर्गवासी गंगाधर राव के उन 6 लाख रुपयों में से जो दामोदर राव के नाम पर सरकारी खजाने में जमा है 1 लाख रुपए यज्ञोपवित संस्कार में खर्च करने के लिए मांग लिए जाए। ये सलाह लक्ष्मीबाई को भी पसंद आई। उन्होंने झांसी के कमिश्नर साहब के पास एक अर्जी दी। उस पर सरकार ने ये उत्तर दिया कि ये रुपए तुम्हारे पति के दत्तक पुत्र के हैं, ये तुमको नहीं दिए जा सकते क्योंकि जब तुम्हारा पुत्र बालिग होगा और अपने रुपए प्राप्त करने के लिए सरकार पर दावा करेगा तब सरकार को रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए यदि आपको रुपयों की जरूरत है तो 4 आदमियों की जमानत देकर ये लिख कर दीजिए कि यदि आपका पुत्र सरकार से रुपए मांगेगा तो आप दे देंगी, तब ही आपको रुपए दिए जाएंगे। लक्ष्मीबाई बहुत ही समझदार स्त्री थी। उन्होंने 4 प्रतिष्ठित लोगों की जमानत देकर सरकार से 1 लाख रुपए लिए और बड़े समारोह से दामोदर का यज्ञोपवीत संस्कार किया। झांसी में ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हुए 2 वर्ष से अधिक बीत गए थे। महारानी लक्ष्मीबाई सारे सांसारिक सुख भोगों से विमुख होकर और उदासीन वृत्ति स्वीकार कर रोज पूजा पाठ और दान धर्म आदि सत्कार्यों में लगी रहती और अपना एक एक दिन बहुत कष्ट से व्यतीत कर रही थी। उस समय उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विधाता ने उनके भाग्य में इससे बढ़कर और भी दुख लिखा है।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।